नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद और नवरोज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने आशा व्यक्त की कि त्योहारों का मौसम पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए सतर्क नागरिकों के सहयोग से सशक्त सेना की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रेस्टोरेंट, होटल, कैंटीन, ढाबों तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी के अतिरिक्त 20% आवंटन को मंजूरी दी। संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान सहित 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का आग्रह किया। देश भर में ईद उल फित्र पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा से हार गई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों सहित ढांचागत केंद्रों पर हुए हमलों की निंदा की। श्री मोदी ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाजरानी मार्गों को खुला और सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान के निरंतर सहयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने श्री मसूद को ईद तथा नवरोज की शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं ने इस त्यौहार के समय पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज शाम ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्षी से बातचीत की। उन्होंने श्री अराक्षी को नवरोज और ईद की शुभकामनाएं दी। डॉ जयशंकर ने बताया कि ये बातचीत संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों और व्यापक क्षेत्र पर इसके प्रभावों के बारे में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए सतर्क नागरिकों के सहयोग से सशक्त सेना की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध अब सीमाओं से दूर चला गया है। इसमें आर्थिक, डिजिटल, ऊर्जा और खाद्य क्षेत्र सहित राष्ट्रीय सुरक्षा भी शामिल है। उत्तराखंड के सैनिक स्कूल गोराखाल के स्थापना दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री सिंह ने ये बात कही।
आज के वारफेयर में इकोनॉमिक वारफेयर के माध्यम से देशों को कमजोर किया जाता है। साइबर वारफेयर के जरिए पूरे सिस्टम को प्रभावित किया जा सकता है। स्पेस डोमेन में भी प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा एक बड़ा विषय बन चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज इन्फॉर्मेशन वारफेयर का दौर है, जहां नैरेटिव को कंट्रोल करना भी वारफेयर का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका।
इससे पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि कई क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष के कारण दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच संभावित ऊर्जा और खाद्य संकट पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अब तक इस तरह के संकट से बहुत हद तक सुरक्षित है। रक्षा मंत्री ने कहा कि संवाद और कूटनीति के जरिए पश्चिम एशिया संघर्ष का समाधान निकाला जाना चाहिए।
भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा, उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा।
सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। ये अब बढ़कर 50% हो जाएगा। इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगम सुधारों पर आधारित 10% आवंटन भी शामिल है। ये अतिरिक्त आवंटन राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, टेरी सब्सिडी वाली कैंटीन और अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा है कि ये आवंटन सोमवार से लागू होगा। उन्होंने कहा कि सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को कुल 50% आवंटन से वाणिज्यिक एलपीजी प्राप्त करने के लिए पात्र होने से पहले तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा।
सरकार ने नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और जरूरी कदम उठा रही है, जिससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। वहीं अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार छापे मारे जा रहे हैं। वहीं पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि वो जहाजों की आवाजाही, बंदरगाहों के कामकाज, भारतीय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर नजर रखे हुए है। MTCFC विष्णु के 15 भारतीय क्रू सदस्य इराक से सुरक्षित वापस लौट चुके हैं। 500 से ज्यादा भारतीय नाविकों को पहले ही सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। 24 घंटों में भारतीय झंडे वाले किसी भी जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया कि फरवरी के आखिर से अब तक करीब 330,000 लोग भारत लौट चुके हैं। कई देशों से उड़ानें जारी हैं और जहां जरूरत है वहां यात्रा की व्यवस्था की जा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों में नाम शामिल करने या हटाने से संबंधित अपीलों की सुनवाई के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन किया है। ये कदम राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया गया है। ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। केरलम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने स्पष्ट किया है कि राज्य में मतदाता सूची संशोधन में भाग लेने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO की सुविधाओं में कटौती की खबरें निराधार हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची के संशोधन में भाग लेने वाले BLO के लिए 2,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने असम में विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। दलगांव से कृष्णा साहा और सिसिबर गांव से जीवन गोगोई को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले पार्टी ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस बीच पार्टी ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत एक सशक्त फार्मा अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वैश्विक गुणवत्ता मानकों, स्वदेशी नवाचार और अनुसंधान को उद्योग से एकीकृत करने पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत का स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि कुशल कार्यबल को सशक्त बनाकर भारत न केवल अपने आर्थिक भविष्य का निर्माण कर रहा है बल्कि विश्व में भी योगदान दे रहा है। मुंबई में रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में योगदान देने का आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित 22 देशों ने आज ईरान से हमले रोकने और होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने का आग्रह किया। एक संयुक्त बयान में इन देशों ने इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और ऊर्जा केंद्रों पर ईरान के हमलों की निंदा की। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कार्यों का प्रभाव विश्वभर में विशेष रूप से गरीब देशों पर पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान खत्म करने पर विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब है। उन्होंने संकेत दिया कि अन्य देशों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। श्री ट्रंप ने साथ ही चेतावनी दी कि किसी भी व्यवधान से वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान युद्ध का पूर्ण, व्यापक और स्थायी अंत चाहता है और उसे युद्ध विराम स्वीकार नहीं है। श्री अराघची ने अमरीकी इसराइली हमलों को अवैध और बिना उकसावे के आक्रामक कार्य बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युद्ध के किसी भी समाधान में भविष्य में हमलों के खिलाफ गारंटी और नुकसान की भरपाई शामिल होनी चाहिए। श्री अराघची ने ब्रिटेन को भी चेतावनी दी कि अगर युद्ध में उसकी भागीदारी बढ़ती है तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि राजनयिक प्रयासों के जारी रहने के बावजूद अमरीका ने अभी तक वास्तविक समाधान के लिए तत्परता नहीं दिखाई है। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर युद्ध के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ईरान पर लागू तेल बिक्री के कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है। इससे समुद्र में फंसे माल की सीमित बिक्री की अनुमति मिल गई है। देश भर में आज ईद उल फित्र का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक रिपोर्ट।
मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में लोगों ने आज एकत्र होकर अमन, शांति और खुशहाली की दुआ की। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर मनाया जाने वाला यह त्यौहार भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। ईद कृतज्ञता और खुशी का दिन है, जहां लोग अपने परिवारों और दोस्तों के साथ मिलते हैं। वहीं आज के दिन नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ ही ईद के अवसर पर घरों में सेवैयां समेत कई पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक की भविष्यवाणी की है। गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उड़ीसा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में नोजोमी ओकुहारा ने तन्वी शर्मा को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। तन्वी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नात्सुकी निदेरा को हराया था। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज ईशा रानी बरुआ और पिचमोन ओपाटनी पुथ आमने सामने होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद और नवरोज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने आशा व्यक्त की कि त्योहारों का मौसम पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए सतर्क नागरिकों के सहयोग से सशक्त सेना की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रेस्टोरेंट, होटल, कैंटीन, ढाबों तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी के अतिरिक्त 20% आवंटन को मंजूरी दी। संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान सहित 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने और होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने का आग्रह किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।